वेलकम टू माय पॉडकास्ट सारथी। आज फिर महीने की पहली तारीख थी। सोचा जल्दी से काम निपटा लूं और हिसाब में लग जाऊं। जल्दी ही दूध वाला, काम वाली, माली, धोबन सब आकर अपना अपना हिसाब करने को कहेंगे। अभी सोच ही रही थी कि तभी धोबन आ गई। मैंने पूछा, इतनी जल्दी आ गई? अभी तो मैंने हिसाब किया भी नहीं। अब तू जा, शाम को आना। झुंझुनाते हुए बोली, दीदी आपको जल्दी कर लेना चाहिए था। जा रही हूं, शाम को आऊंगी। अब जाते हुए बोली कि अगर पति आए पैसे मांगने, उसको मत थमा देना। मैंने पूछा, उसे क्यों नहीं देना? दीदी अपनी कमाई तो कुछ देता नहीं, घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है। अरे आपसे ले गया तो सारा पैसा दारू में उड़ा देगा। उसकी बात सुनकर अपने एक पुराने दोस्त पायल की याद आ गई। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, पढ़े लिखे घर की लड़की, शादी भी अच्छे घर में हुई, पर पति की सोच कुछ अजीब थी। शादी की पहली रात ही उसने पायल से कहा कि शादी तो तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बढ़िया की, पर शगुन में जो पैसे दिए उसे तुम्हारे बैंक खाते में क्यों डाला? रिश्तेदारी में हमारी बहुत बेइज्जती हुई। सबने कहा शगुन तो घर के होने वाले जवाई को देना चाहिए था। उसके बाद तो जैसे पैसा ही शादी की सबसे जरूरी कड़ी बन गया। पति ने कभी उसे घर चलाने के लिए पैसे नहीं दिए। घर के नौकर से सारा राशन मंगवाता और उसी के हाथ में पैसे देता था। घर का बाकी खर्चा भी खुद ही करता था। अगर किसी महीने 4 अंडे ज्यादा या दूध की थैली फालतू आ गई तो घर में तो बवाल हो जाता था। गलती से टूटे अंडों का फलसफा हो या दूध की थैली के फटने की गाथा, हर चीज़ का हिसाब पायल को देना पड़ता था। हिसाब देने के बाद गालियों की बौछार और पति के पैसों पर ऐश करने वाली कमज़र्फ बीवी का तगमा भी मिलता था। कपड़े तो उसने कभी खरीद के ही नहीं दिए। अपने पिताजी के घर से लाओ अपने कपड़े, अपने रिश्तेदारों के जाना है तो उसका खर्चा भी पिताजी ही देंगे। हाँ, पर आते हुए रिश्तेदारों से शगुन जरूर ले आना, बेटियां मायके से खाली हाथ नहीं आती। और जो शगुन लेकर आओ उसे आकर मेरी हथेली पर धर देना। फोन तो कभी उसने पायल को रखने ही नहीं दिया। अरे उसका बिल आता था जो पति देना नहीं चाहते थे। घर में दोस्तों की आने की मनाही थी। अब कोई घर में आएगा तो उसे चाय नाश्ता तो करवाना पड़ेगा, पर पति का इसमें बहुत खर्च होता और वो पति करना नहीं चाहते थे। पैसों की इसी खींचातानी में कुछ साल बीतते गए और फिर उनके घर आया एक नया मेहमान। बेटे का जन्म हुआ था। बच्चे की डिलीवरी से लेकर अस्पताल का सारा खर्चा पायल के परिवार ने किया। बच्चे के कपड़े, खिलौने, झूला सब नाना नानी के घर से आया। बच्चे की एक एक चीज खरीदने के लिए मेरी दोस्त तरस जाती। नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि पति की नौकरी में तबादला बहुत जल्दी होता था। ऐसे में कोई पायल को नौकरी देने को तैयार ही नहीं था। अपने माँ बाप के दिए पैसों पर पायल जैसे तैसे अपना वक्त काटती रही। शादी में मिले गहने, शगुन के पैसे सब पति ने ले लिए थे। पैसे पैसे को मोहताज हो गई थी। समय बीतता गया और फिर बेटे को स्कूल में दाखिल करवाने का समय आया। पायल एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी तो मन में इच्छा हुई कि बेटे को भी एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। पर पति ने दो टूक शब्द में जवाब दे दिया कि प्राइवेट स्कूल की फीस तो मैं नहीं दूंगा, उसका खर्चा तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद नौकरी कर लो या अपने पिताजी से ले आओ। जहां तक मुझे याद है तो शायद पायल की अपने पति के साथ वो आखिरी बात थी। उस दिन पायल ने सोचा कि जिस डर और शर्म ने उसे कभी अपनी शादी से बाहर कदम नहीं रखने दिया, आज उसका गला घोटने का वक्त आ गया है। डर था कि वो अपने आप को और अपने बेटे को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेगी, कैसे करेगी वो अपना और अपने बेटे का खर्चा। पर उस दिन शायद उसके मन को चोट गहरी लगी थी। उसने सोचा कि सारी दुनिया को चलाने वाला भगवान उसकी और उसके बेटे की भी रक्षा करेगा। शर्म को तो आज पायल ने कोसों मील पीछे छोड़ दिया था। जिस आदमी को अपनी बीवी और बच्चे की बेइज्जती करते कभी शर्म नहीं आई, आज पायल को उसे छोड़ते कैसी शर्म आती। अगले दिन अपना सामान समेटकर अपने पिताजी के घर वापस आ गई थी पायल। परिवार ने पायल का बहुत साथ दिया। कुछ महीने अपनी जिंदगी को समेटने में लगाए, अपना आत्मविश्वास दोबारा से इकट्ठा किया, मन में ठाना कि अब कुछ करना है। पायल ने लॉ का एंट्रेंस टेस्ट दिया और लॉ की पढ़ाई करने लगी। साथ ही साथ पायल ने अपने पति को डिवोर्स का नोटिस भी भिजवा दिया। आज पायल एक वकील बन गई है, अपना और अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, अपनी जैसी बहुत सारी औरतों की मदद करती है और उन्हें नई दिशा दिखाकर एक खुशहाल जीवन की तरफ प्रेरित करती है। तलाक मिल गया था मेरी दोस्त को। डिवोर्स का कारण था पति द्वारा आर्थिक दुर्व्यवहार, जिसे हम फाइनेंशियल अब्यूज भी कहते हैं। मुझे याद है वो दिन जिस दिन पायल को डिवोर्स मिला था। उस दिन वो अपने दोस्तों को खाने पर होटल में लेकर गई थी, मैं भी साथ ही थी। पहली गिराही मुंह में रखते ही उसे अपने पति की कही एक बात याद आ गई। अक्सर पायल को कहा करता था, इतना खाओगी खा खा कर भैंस जैसी पसर जाओगी, थोड़ा कम खाया करो, मैं रुपया खर्च करता हूँ तुम्हारे खाने पर। इस बार पायल उसकी बात सोचकर दुखी नहीं हुई। उसने हम सब की तरफ देखते हुए कहा, अरे आज तो दुगना खाऊंगी, अपनी कमाई का खा रही हूं, किसी के बाप का नहीं। उसकी वो बात सुनकर मन खुशी से भर गया था। अभी अपनी सोच में ही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी और उसी के साथ मैं अपनी सोच से बाहर निकल आई। बाहर देखा तो धोबिन का पति खड़ा था, जैसे धोबिन ने कहा था कि वो आएगा ही। बोला, पैसे लेने आया हूं। उसे देखकर दिल करा एक तमाचा धर दूं, पर किसी तरह अपने आप को रोका और उसे कहा कि ये तेरी पत्नी की मेहनत की कमाई है, किसी के बाप की नहीं, दारू में उड़ाने के लिए नहीं। उसे चेतावनी दी कि दोबारा कभी यहां अपनी पत्नी के पैसे मांगते हुए मुझे नजर आया तो पुलिस थाने में भिजवा दूंगी। यह कहकर मैं घर के अंदर चली आई। आज मन को कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। अपने दोस्त के लिए तो कुछ नहीं कर पाई थी, पर आज एक औरत के लिए कुछ कर पाई थी मैं। याद रखिए, अपनी पत्नी को जान पूछकर तंग करना या आर्थिक तौर पर सताना एक अपराध है। फाइनेंशियल अब्यूज एक बहुत ही ताकतवर हथियार है आदमी के लिए, अपनी पत्नी को हिंसा के जाल में फंसाने के लिए। पैसे को और अपने भविष्य को लेकर औरत के मन में जो असुरक्षा और डर होता है, उसी को पति अपनी ताकत बना लेता है और उस हथियार से अपनी बीवी पर मानसिक और आर्थिक हमला करता है। आर्थिक दुर्व्यवहार और बहुत अनेक तरीकों से होता है, जिनमें से कुछ है हर छोटे छोटे खर्च का हिसाब लेना, पत्नी की कमाई को उससे पूछे बिना खर्च करना, पत्नी की आवश्यकताओं को जरूरतों को पूरा ना करना, उसको नौकरी ना करने देना या उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को अपनी मर्जी से खर्चना, अपनी तनख्वाह और पैसों की जानकारी उससे छुपाना और घर के खर्चों में उसकी सहमति ना लेना। फाइनेंशियल अब्यूज एक अपराध है। अगर आपके पति आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप उनसे सवाल कीजिए और अपनी आवाज़ उठाइए।